जाना वल्लभा गिरिवर धारी जय गोपी जाना जाना वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जाना यशोदानंदन व्रजद नंदन यशोदानंदन व्रजद नंदन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरा माधव राधा माधव कुंज जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय यशोदानंदन रज जन नंदन यशोदानंदन रज जन नंदन यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गिरिधरी राधा गिरिधरी राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानाय जय गौरानिताय नीता गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नीता गौर हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद श्री प्रभुपाद महाराज की जय प्रभुपाद लीलामृत की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नयस्तती जय चित्रा गिरी भगवान की जय जगन्नाथ सुभद्रा मैया ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तु ते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिवे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के बजाय प्रभुपाद लीलामृत से पाठ करेंगे। प्रकरण है 22, शीर्षक है स्वामी हितियों को आमंत्रित करते हैं। तो जनवरी 16, 1967 यूनाइटेड स्टेट एयरलाइंस का जेट विमान सैन फ्रांसिस्को के क्षेत्र में नीचे उतर रहा था। श्री प्रभुपाद अपने शिष्य रणछोड़ की ओर मुड़े और बोले, इमारते दियासलाई की डिबियो जैसी दिख रही है। जरा सोचो, कृष्ण के दृष्टिकोण से यह सब कैसा दिख रहा होगा। श्री प्रभुपाद 71 वर्ष के थे और यह उनकी पहली हवाई यात्रा थी। रणछोड़ जो 19 वर्ष का था और सूट टाई पहने था, श्री प्रभुपाद का सचिव माना जाता था। वह नया शिष्य था, लेकिन उसने कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए थे और प्रभुपाद के साथ हवाई जहाज से सैन फ्रांसिस्को जाने की प्रार्थना की थी। यात्रा के दौरान प्रभुपाद बहुत कम बोले थे, वे जप करते रहे थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनका दाहिना हाथ माला की कपड़े की थैली में था और जब वे मौन जप में लीन थे तब वे उंगलियों को माला के एक के बाद दूसरे मनके पर फिरा रहे थे। जब विमान न्यूयॉर्क शहर के ऊपर उठा था तो उन्होंने खिड़की में से निरंतर छोटी दिखती जा रही खिड़की में से निरंतर छोटी दिखती जा रही इमारतों को देखा था। तब विमान बादलों के बीच चला गया था जो प्रभुपाद को आकाश में समुद्र जैसे लगे थे। दबाव के कारण कानों के बंद हो जाने से उन्हें कुछ परेशानी हुई थी और उन्होंने इसकी चर्चा की थी, अन्यथा अधिकतर वे मौन थे। लेकिन वे कृष्ण के नामों का जप बार बार करते रहते थे। अब जबकि विमान नीचे उतर रहा था वे जप करने में लगे रहे। कुछ कुछ फुट आवाज कृष्ण 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 और खिड़की से बाहर जाकर उन्होंने डियासलाई की डिबियों जैसी हजारों इमारतों और चारों दिशाओं में योजनाबद्ध फैली सड़कों के जाल के दृश्य पर दृष्टिपात किया। जब यूनाइटेड एयरलाइंस जेट विमान की न्यूयॉर्क उड़ान नंबर 21 की घोषणा लाउडस्पीकर पर सुनाई पड़ी तो लगभग 50 हिप्पियों का दल पहले ही और निकट सिमट आया था। एक क्षण के लिए वे भयभीत से लगते थे। इस अनिश्चय से कि आगंतुक स्वामी से क्या अपेक्षा की जाए या वे कैसे होंगे। रोजर सिगल सैन फ्रांसिस्को हवाई अड्डे के लिए हमारे दल के लोग विविध प्रकार के लगते थे। मुकुंद मर्लिन बाजीगर जैसा पहनावा पहने था जिस पर सर्वत्र वर्गाकार खाने बने थे। साम मरक्को की भेड़ की खाल और उसी की टोपी धारण किए था। उससे भेड़ जैसी गंध भी आ रही थी और मैं एक जापानी योद्धा की घर में बनी हुई नीली पोशाक में था जिस पर छोटी छोटी सफेद बिंदियां थी। मनकों की लंबी लड़ी वाली मालाएं सर्वत्र दिखाई देती थी। कहीं मृगशाला में लिपटे लोग थे, कहीं बूटों की चरमर थी, कहीं सेना के दंडित जवान थे तो कहीं छोटे गोल धूप के चश्मे पहने लोग। सैन फ्रांसिस्को का पूरा मायाजाल अपनी सीमा पर पहुंचा दिखाई देता था। एकत्रित समूह में स्वामी जी को जानने वाले बहुत थोड़े लोग थे। मुकुंद और उसकी पत्नी जानकी, रविंद्र स्वरूप, रायराम, सभी न्यूयॉर्क के लोग और एलेन गिन्सबर्ग भी वहाँ था। कुछ दिन पहले गोल्डन गेट पार्क में जो समारोह हुआ था उसके नेताओं में से एक एलेन भी था। उस समारोह में 2,00,000 से भी अधिक लोग इकट्ठे हुए थे। आदिवासियों का एक समूह परस्पर विचार विनिमय और शांति नृत्य के लिए आज स्वामी भक्तिवेदांत का स्वागत करने के लिए एलेन मौजूद था, जिनसे वह कई महीने पहले न्यूयॉर्क के लोअर ईस्ट साइड में मिल चुका था और जिनके साथ कई बार कीर्तन कर चुका था। मुकुंद ने हर एक को याद दिलाया कि जब स्वामी जी द्वार से बाहर आ रहे होंगे और यदि हम समय सब हरे कृष्ण गाते रहेंगे तो वे बहुत प्रसन्न होंगे। हरे कृष्ण मंत्र से सभी अवगत थे। न्यूयॉर्क के पार्क में स्वामी जी हरे कृष्ण गान के बारे में सभी सुन चुके थे या वे स्थानीय भूमिगत पत्र ओरेकल में स्वामी जी और उनके मंत्र के विषय में लेख पढ़ चुके थे। उस दिन सवेरे मुकुंद द्वारा वितरित इष्टहार को पढ़कर वे गोल्डन गेट पार्क में इकट्ठे हुए थे और 1 घंटे से अधिक हरे कृष्ण का कीर्तन करने के बाद मोटर गाड़ियों में बैठकर हवाई अड्डे गए थे। अब उनमें से बहुत से मुकुंद के इष्टहार का अनुसरण करते हुए हाथ में फूल और सुगंधित अगरबत्ती लिए वहां खड़े थे। तो मुकुंद कहते हैं सभी भक्तों को कि स्वामी जी आ रहा है तो उसको कैसे स्वागत है, वो उसकी वो किससे प्रसन्न होंगे। तो मुकुंद बताते हैं सभी भक्तों को के केवल हरे कृष्ण महामंत्र का गान करना है, क्योंकि वो लोग विदेशी थे, उनको पता नहीं कि स्वामी जी का कैसे स्वागत किया जाए। जब उतरने वाले यात्री हवाई अड्डे के सीमांत द्वार में प्रवेश करके ढलान के ऊपर चढ़ने लगे तो फूल मालाएं लिए हुए और कीर्तन करने वाले स्वागतकर्ताओं को देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। किंतु कीर्तन करने वाले स्वागतकर्ताओं की दृष्टि थकान से लथपथ सामान्य यात्रियों पर नहीं पड़ी, वे तो उस विमान से आने वाले एक विशेष व्यक्ति की खोज में थे। अचानक स्वामी जी उनकी ओर बढ़ते दिखाई दिए। चमकदार केसरिया वस्त्र पहने हुए गेहुए रंग वाले प्रभुपाद ने सीमांत द्वार में प्रवेश करने के पहले ही हरे कृष्ण कीर्तन सुन लिया था और वे मुस्कुराने लगे थे। वे प्रसन्न और विस्मित थे। चेहरों पर दृष्टिपात करते हुए वे केवल कुछ को ही पहचान सके। इतने पर भी उनके स्वागत के लिए 50 लोग एकत्र थे और बिना उनके कुछ कहे हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे थे। मुकुंद बताते हैं, हमने स्वामी जी पर दृष्टि डाली और हम नतमस्तक हो गए। स्वयं में मेरी पत्नी और मेरे साथ आए मित्र साम मार्जोरी आदि और तब वहां के सभी लोगों ने युवा पुरुष स्त्रियां जो वहां एकत्र थे हमारा अनुसरण किया और सभी ने स्वामी जी को सिर झुकाया। सभी को विश्वास था कि उस समय वही करना ठीक और उचित था। सभी ने प्रणाम किया प्रभुपाद जी को। हिप्पियों का झुंड उस संकरे मार्ग की दोनों ओर पंक्तिबद्ध खड़ा हो गया था जिससे स्वामी जी को निकलना था। जब वे उस मार्ग पर अपने नए प्रशंसकों के बीच में आगे बढ़ रहे थे उस समय दर्जनों हाथ उन्हें फूल और सुगंध अर्पण करने को आगे फैल गए। उपहारों को दोनों हाथों में स्वीकार करते हुए वे मुस्कुरा रहे थे और रणछोड़ यह सब देख रहा था। एलन गिंसबर्ग एक बड़ा गुलदस्ता लेकर आगे बढ़ा। प्रभुपाद ने उसे कृपा पूर्वक स्वीकार किया। तब प्रभुपाद उपहारों को उन लोगों में बांटने लगे जो उन्हें प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े। वे सीमांत द्वार से आगे बढ़ रहे थे और उनकी दोनों ओर युवक और युवतियों की भीड़ कीर्तन करती हुई चल रही थी। सामान लेने के काउंटर पर स्वामी जी एक क्षण रुके। उनकी दृष्टि चारों ओर खड़े लोगों का सर्वेक्षण कर रही थी। खुली हथेलियों को ऊपर उठाते हुए उन्होंने लोगों को उच्च स्वर में कीर्तन करने के लिए संकेत किया। एकत्रित समूह फिर से ऊंचे स्वर में कीर्तन करने लगा। प्रभुपाद उसके बीच में खड़े थे। वे हल्के हल्के ताली बजा रहे थे और हरे कृष्ण का गान कर रहे थे। फिर उन्होंने मनोहारी ढंग से अपनी बाहों को ऊपर उठाया और इस ओर से उस ओर झूमते हुए वे नाचने लगे। हवाई अड्डे के कार्यकर्ताओं और यात्रियों में से किसी को खिज हुई, किसी का मनोरंजन हुआ और किसी को अपार आनंद प्राप्त हुआ। प्रभुपाद का सामान मिलने तक स्वागत दल वहां रुका रहा। तब लोग उन्हें बाहर सूर्य के प्रकाश में ले गए और प्रतीक्षा में खड़ी 1949 मॉडल की एक कैडिलक फिटबूड काली कार तक ले गए। मुकुंद और गिन्सबर्ग के साथ प्रभुपाद कार के पिछले भाग में बैठ गए। जब तक कि कार मोड़ से बाहर नहीं निकली, प्रभुपाद जो कृष्ण भावनामृत को पश्चिम को देने के लिए आए थे और अभी तक मुस्कुरा रहे थे, उन सभी लोगों को पुष्पों का उपहार बांटते रहे जो उनके स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर आए थे। कैडिलक कार हार्वे कोहन की थी, जिसने लगभग एक वर्ष पूर्व प्रभुपाद को बौरी की ऊपरी मंजिल ठहरने के लिए दी थी। हार्वे कार चला रहा था, लेकिन चूंकि वह शोफर ड्राइवर का हेड जो उसने साल्वेशन आर्मी के एक स्टोर से खरीद लिया था और काला सूट पहने था और दाढ़ी रखे था, इसलिए प्रभुपाद ने उसे नहीं पहचाना। हार्वे कहाँ है, प्रभुपाद ने पूछा। हार्वे को ही पूछा, हार्वे कहाँ है, नहीं नहीं मुकुंद को पूछा। तो वे मुकुंद ने कहा वे कार चला रहे हैं और तुम ही हो, मैंने पहचाना नहीं। हार्वे मुस्कुराया। सैन फ्रांसिस्को में आपका स्वागत है स्वामी जी। श्री प्रभुपाद को प्रसन्नता थी कि वे अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती और भगवान चैतन्य की ओर से एक अन्य बड़े पाश्चात्य नगर में पहुंचे थे। भगवान चैतन्य ने कहा था कि पश्चिम में जितना ही आगे बढ़ते जाए लोग उतने ही अधिक भौतिकतावादी मिलेंगे। इतने पर भी भगवान चैतन्य का कहना था कि कृष्ण भावनामृत का प्रसार समस्त विश्व में होना चाहिए। प्रभुपाद के गुरु भाइयों को भगवान चैतन्य के इस कथन पर प्रायः आश्चर्य होता था कि कृष्ण के नाम का गान हर कस्बे और गांव में होगा। उन्होंने कहा कदाचित उनके कथन को एक प्रतीक के रूप में ग्रहण करना होगा, अन्यथा उसका क्या अर्थ हुआ कि कृष्ण हर कस्बे में, किंतु श्री प्रभुपाद को भगवान चैतन्य की वाणी में और अपने गुरु महाराज के उपदेश में गहरा विश्वास था। वे सुदूर पश्चिम के सैन फ्रांसिस्को नगर में पहुंचे थे और लोगों ने पहले ही कीर्तन शुरू कर दिया था और उन्होंने कीर्तन के साथ उनका स्वागत किया था। विश्व के अन्य नगर भी तो बहुत कुछ ऐसी ही थे। मुकुंद और उनके मित्रों ने जो मंदिर प्राप्त किया था वह है एशबरी डिस्ट्रिक्ट में फ्रेडरिव स्ट्रीट पर था। न्यूयॉर्क के 26 सेकंड एवेन्यू के मंदिर की तरह यह मंदिर भी एक छोटे स्टोर के अगले हिस्से में था। उसमें एक प्रदर्शन खिड़की थी जिसके सामने सड़क थी। खिड़की के ऊपर संकेत अंकित था श्री राधा कृष्ण मंदिर। मुकुंद और उनके मित्रों ने पास की इमारत की तीसरी मंजिल पर स्वामी जी के लिए 3 कमरों का एक अपार्टमेंट किराए पर ले रखा था। यह एक छोटा सा बिना साज सज्जा वाला पुराना अपार्टमेंट था जिसके सामने सड़क थी। भक्तों और उत्सुक दर्शनार्थियों से भरी गाड़ियों से जाए जा रहे श्री प्रभुपाद 518 फेडरिक स्ट्रीट में पहुंचे और स्टोर फंड के मंदिर में प्रविष्ट हुए, जिसकी दीवारें कुछ मद्रासी कपड़ों से सजाई गई थी। एक गद्दी पर बैठकर उन्होंने कीर्तन का नेतृत्व किया और तब हर एक को कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करने का आमंत्रण करते हुए प्रवचन दिया। प्रवचन के बाद वे स्टोर फंड से निकले और निकट के दरवाजे से 2 छतों तक सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने अपार्टमेंट में पहुंच गए। जब वे अपने कमरा नंबर 32 में पहुंचे तो उनके पीछे न केवल उनके अनुयायी और प्रशंसक थे, वरना सैन फ्रांसिस्को के प्रमुख समाचार पत्रों दी क्रांतिकिल और दी एग्जामिनर के संवाददाता भी थे। उनके अनुयायी उनका भोजन बनाने में लग गए, जबकि रणछोड़ उनका सूटकेस खोलकर सामान रखने लगा। स्वामी जी संवाददाताओं से वार्ता करने लगे, जो फर्श बैठे अपने पैड पर नोट लिखे जा रहे थे। संवाददाता प्रश्न करते हैं, अभी नीचे आपने कहा है कि आप हर एक को कृष्ण भावनामृत स्वीकार करने को आमंत्रित कर रहे हैं, क्या उसमें हेट एशबरी के जिप्सी और बीटनिक भी शामिल है? प्रभुपाद ने कहा, हाँ, हर एक जिसमें आप और अन्य हर कोई भी शामिल है, चाहे वह पुरुष या स्त्री, उस कोटि का हो जिसे घोर नशेबाज एलएसडी का सेवन करता कहा जाता हो, या वह हिप्पी हो या कुछ और हो, लेकिन एक बार जब वह प्रशिक्षण के लिए स्वीकार कर लिया जाता है तो वह बदल कर कुछ का कुछ हो जाता है। संवाददाता और आगे कहते हैं, आपके आंदोलन का सदस्य बनने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रभुपाद कहते हैं, हमारे यहाँ चार पूर्वापेक्षाएं हैं। मैं अपने शिक्षार्थियों को साथ में सहेलिया या मित्र रूप में लड़कियां नहीं रखने देता। मेरे यहाँ सभी प्रकार के मादक द्रव्य वर्जित है, जिनमें काफी, चाय और सिगरेट सम्मिलित है। मैं मांसाहार का निषेध करता हूँ और मैं अपने शिक्षार्थियों को जुआ खेलने में मना करता हूँ। संवाददाता आगे पूछते हैं, क्या निषिद्ध मादक द्रव्यों में एलएसडी, चरस, गांजा और अन्य मादक द्रव्य भी शामिल है? प्रभुपाद कहते हैं, मैं एलएसडी को एक मादक द्रव्य मानता हूँ। मैं अपने शिक्षार्थियों को उसके या किसी भी अन्य मादक द्रव्य के सेवन की अनुमति नहीं देता। मैं अपने शिष्यों को प्रातःकाल उठने की, यथाशीघ्र स्नान करने की और दिन में 3 बार प्रार्थना सभाओं में सम्मिलित होने का प्रशिक्षण देता हूँ। हमारा संप्रदाय संयम का संप्रदाय है, यह भगवत विज्ञान का संप्रदाय है। यद्यपि प्रभुपाद ने देखा कि संवाददाता उनके जीवन दर्शन के बारे में प्रायः नहीं लिखते थे, तो भी कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने का अवसर वे नहीं चूकते थे। संवाददाता उनके दर्शन की गहराइयों में न भी बैठे तो भी उनके अनुयायियों तो ऐसा करते ही थे। आधुनिक सभ्यता की सबसे बड़ी भूल यह है, प्रभुपाद ने कहना जारी रखा, कि दूसरों की संपत्ति को इस प्रकार हथियाने की कोशिश की जाती है मानो वह अपनी ही हो। इससे स्वाभाविक अशांति पैदा होती है। विश्व की हर वस्तु के एकमात्र स्वामी भगवान है। जब लोगों को बोध हो जाएगा कि भगवान परम स्वामी है, वे ही हर जीवधारी के सबसे अच्छे मित्र और सभी आहुतियों और बलिदानों के अंतिम लक्ष्य है, तब सर्वत्र शांति हो जाएगी। संवाददाताओं ने उनका पूर्व इतिहास जानना चाहा और उन्होंने संक्षेप में बताया कि वे भारत से यहाँ पहुंचते थे और न्यूयॉर्क में अपना कार्य आरंभ कर चुके थे। संवाददाताओं के जाने के बाद प्रभुपाद कमरे में उपस्थित नवयुवकों से बात करते रहे। मुकुंद ने जिसने सिर और दाढ़ी के बाल बढ़ा लिए थे, लेकिन जो गले में बड़े लाल मनकों वाली वह माला पहने हुए थे जिसे दीक्षा के समय स्वामी जी ने दिया था, अपने कुछ मित्रों का परिचय कराया और बताया कि वे सब एक साथ रह रहे थे और स्वामी जी की सहायता करना चाहते थे कि वे कृष्ण भावनामृत को सैन फ्रांसिस्को के युवकों के सामने प्रस्तुत करें। मुकुंद की पत्नी जानकी ने स्वामी जी से उन हवाई यात्रा के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि यात्रा सुखद थी, सिवाय उसके इसके कि कानों में उन्होंने कुछ दबाव अनुभव किया। इमारतें दिया सलाई की डिबिया मालूम होती थी, उन्होंने कहा, और अपने अंगूठे और उंगलियों से दिया सलाई की डबिया का आकार बताया। प्रभुपाद जी ने वे दीवार के सहारे बैठ गए और उन्होंने उन सभी मालाओं को गले में निकाल दिया जो उस दिन उन्हें पहनाई गई थी। अंत में उनके गले से केवल एक हार लटकता रह गया जो साधारण रस्ते मनकों का बना था और जिसमें एक छोटी घंटी पिरोई थी। प्रभुपाद ने उसे हाथ में लिया, उसकी कारीगरी देखी और वे उस पर हाथ फेरने लगे। यह एक विशेष हार है, उन्होंने सिर उठाते हुए कहा, क्योंकि उसका निर्माण भक्ति के साथ किया गया है। वे हार को ध्यानपूर्वक देखते रहे, मानो उसको प्राप्त करना उनके लिए उस दिन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। जब उनका दोपहर का भोजन आया तो उन्होंने उसमें से थोड़ा थोड़ा हर एक को बांट दिया और तब रणछोड़ ने तत्परतापूर्वक यद्यपि कुछ बेढंगेपन के साथ लोगों से वहां से चले जाने और स्वामी जी को भोजन तथा आराम करने देने को कहा। आवास के बाहर और नीचे स्टोरफ्रंट के इर्द गिर्द बात केवल स्वामी जी के बारे में चल रही थी, किसी को भी उनसे निराशा नहीं हुई थी। मुकुंद उनके बारे में जो कुछ कहते रहे थे वह सब सच था। सबको स्वामी जी की यह बात बहुत अच्छी लगी कि हर वस्तु को कृष्णमय देखनी चाहिए। स्वामी जी के सैन फ्रांसिस्को पहुंचने का समाचार उसी रात 11 बजे के टेलीविजन समाचारों में प्रसारित किया गया और दूसरे दिन वह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ। एग्जामिन ने उसे दूसरे पृष्ठ पर छापा। हिपियों को स्वामी जी का आमंत्रण, ऐसा पेपर में लिखा गया था हेडलाइन पर। साथ में मंदिर का चित्र छपा और अनुयायियों से भरा था। स्वामी जी के भी कुछ चित्र छपे जिनमें वे बहुत गंभीर दिखाई दे रहे थे। प्रभुपाद ने मुकुंद से समाचार ऊंची आवाज में पढ़वाया। लंबे और दुबले पतले धर्मगुरु मुकुंद ने पढ़ा, जो घुटनों तक लंबा और ढीला ढाला कुर्ता पहने थे और एक विस्तृत चटाई पर पालथी मारकर बैठे थे। स्वामी जी बीच में बोल उठे, यह लैकी शब्द क्या है? मुकुंद ने बताया कि इस शब्द का मतलब लंबा और दुबला पतला है। मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। मुकुंद बोले, हो सकता है कि चूंकि आप तनकर सीधे बैठते हैं इसलिए उन्होंने समझा हो कि आप बहुत लंबे हैं। समाचार में वर्णन था कि हवाई अड्डे पर स्वागतकर्ताओं में बहुत से लंबे बाल वाले, दाढ़ी रखे हुए और तिलक चंदन लगाए हुए लोग थे। सैन फ्रांसिस्को के सबसे बड़े पत्र दी कांतिकिल ने भी एक लेख प्रकाशित किया, हिपियों के देश में स्वामी धर्मगुरु द्वारा SF मंदिर का उद्घाटन। लेख का आरंभ इस प्रकार होता था, भारत के एक धर्मिष्ठ पुरुष ने, जिसे उसके मित्र और बीट कवि एलन गिसबर्ग अपने धर्म के रूढ़िवादी नेताओं में से एक मानते हैं, सैन फ्रांसिस्को के हिपियों के गढ़ में कल एक सुसमाचार उपक्रम का सूत्रपात किया। श्री प्रभुपाद को रूढ़िवादी कहे जाने पर आपत्ति हुई, वे रुष्ट हुए। कंजरवेटिव यह कैसे? यौनाचार और मद्य सेवन के मामलों में मुकुंद ने सुझाव दिया। मुकुंद ने कहा कि आपने यौनाचार और मद्यपान के सेवन में बताया था, इसलिए आपको ऐसा बोल रहे हैं। सचमुच हम इन मामलों में रूढ़िवादी है, प्रभुपाद ने कहा। इसका तात्पर्य केवल यह है कि हम शास्त्रों का अनुगमन कर रहे हैं, हम भगवत गीता से अलग नहीं हट सकते, लेकिन हम रूढ़िवादी नहीं है। चैतन्य महाप्रभु इतने दृढ़ थे कि वे किसी स्त्री पर दृष्टिपात भी नहीं करते थे, लेकिन हम अपने आंदोलन में सभी को स्वीकार करते रहे हैं, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, और चाहे वह किसी भी जाति का हो और उसका पद कैसा भी हो, हर एक आमंत्रित है कि वह आए और हरे कृष्ण का कीर्तन करे। यह महाप्रभु चैतन्य की वदान्यता है, उनकी उदारता है, नहीं हम रूढ़िवादी नहीं है। श्री प्रभुपाद बिस्तर से उठे और उन्होंने बत्ती जला दी। रात का एक बजा था, यद्यपि अलार्म नहीं बजा था और उन्हें जगाने कोई नहीं आया था, तो भी वे अपने आप उठ गए। कमरा ठंडा और शांत था। अपनी चादर कंधों पर लपेटते हुए पांडुलिपियों से भरे बक्स को काम चलाओ डेस्क बनाकर उसके सामने बैठ गए और पूर्णतः ध्यानस्थ होकर माला फेरते हुए हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने लगे। एक घंटे तक जप करने के बाद श्री प्रभुपाद लिखने में लग गए। यद्यपि दो वर्ष बीत गए थे जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का तीसरा और अंतिम खंड प्रकाशित किया था, वे हर दिन कार्य करते रहते थे, कभी दूसरे स्कंद के अनुवाद और भाष्य पर, किंतु अधिकतर भगवत गीता पर। वर्ष 1900 के चौथे दशक में उन्होंने पूरी भगवत गीता का अनुवाद और टीका तैयार की थी, लेकिन उसकी यह एक ही प्रति थी और वह रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। तब 1965 में अमेरिका में कुछ महीने बिताने के बाद उन्होंने फिर आरंभ किया था। गीता की प्रस्तावना से शुरू करके जो उन्होंने न्यूयॉर्क के 72वीं स्ट्रीट में अपने कमरे में रहते हुए लिखी। अब वह भगवत गीता पूरी हो गई थी और पांडुलिपि के हजारों पुष्टों से उनका बक्स भर गया था। यदि उनके न्यूयॉर्क के शिष्य हयग्रीव, जो पहले अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, उसका संपादन कर सकते और कुछ अन्य शिष्य उसे प्रकाशित करा सकते, तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन अमेरिका में पुस्तकें प्रकाशित करना एक कठिन काम था, भारत से अधिक कठिन काम। यद्यपि भारत में वे अकेले थे, तो भी 3 वर्ष में वे 3 खंड प्रकाशित करने में सफल हुए थे। यहाँ अमेरिका में उनके बहुत से अनुयायी थे, लेकिन बहुत से अनुयायियों का अर्थ था अधिक जिम्मेदारियां, और अभी तक अनुयायियों में से किसी की गंभीर रुचि टाइप संपादन और अमेरिका के व्यवसायियों से संपर्क करने की और नहीं मालूम हो रही थी। तो भी भगवद गीता के प्रकाशन की आशा बहुत धुंधली होने पर भी श्री प्रभुपाद ने एक दूसरे ग्रंथ चैतन्य चरितामृत का अनुवाद आरंभ कर दिया था, जो भगवान चैतन्य के जीवन और उपदेश पर प्रमुख वैष्णव धर्म ग्रंथ है। पढ़ने का चश्मा लगाते हुए प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकें खोली और टेप रिकॉर्ड को चालू कर दिया। बांग्ला और संस्कृत पुस्तकों से उन्होंने मूल पाठ का अध्ययन किया और टेप रिकॉर्ड के माइक्रोफोन को उठाया, रिकॉर्ड करने का बटन दबाया, छोटी लाल बत्ती जली और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। जब भगवान चैतन्य हरे कृष्ण गाते और नाचते हुए आगे बढ़ रहे थे तब उनके पीछे सहस्त्र लोग चल रहे थे। प्रभुपाद एक बार में केवल एक वाक्यांश बोलते थे, टेप रिकॉर्ड बंद कर देते थे, रुकते थे और फिर बोलने लगते थे। उनके अनुयायियों में कुछ हंस रहे थे, कुछ नाच रहे थे और कुछ गा रहे थे। कुछ धरती पर लेटकर उनके प्रति श्रद्धा प्रकट कर रहे थे। इस प्रकार बोलते और रुकते हुए, कभी टेप रिकॉर्ड चलाते और कभी बंद करते हुए प्रभुपाद सीधे तन कर बैठ रहे। शब्दों की अभिव्यक्ति में तेजी लाने के लिए कभी वे झूमने लगते और कभी सिर हिलाने लगते या कभी वे अपनी पुस्तकों पर नीचे झुककर चश्मे के द्वारा ध्यानपूर्वक उनका अध्ययन करने लगते। एक घंटा बीत गया और प्रभुपाद कार्य में लगे रहे। इमारत में अंधेरा था, सिवाय प्रभुपाद के लैब के चारों ओर शांति थी, सिवाय प्रभुपाद की आवाज और टेप प्रकरण के चलने और बंद होने की ध्वनि के। अपनी भूरी उन्हीं चादर के नीचे उन्होंने एक पुरानी पीले रंग की बंद गले वाली जर्सी पहन रखी थी। क्योंकि वे बिस्तर से अभी उठे थे इसलिए उनकी केसरिया रंग की धोती में बल पड़े हुए थे। बिना मुंह धोए या शौचादि से निवृत्त हुए बिना वे अपने कार्य में डूबे बैठे थे। यही कुछ विरल घंटे ऐसे थे जब कम से कम उनकी सड़क और राधा कृष्ण मंदिर में शांति होती थी। रात का अंधकार, शांत परिसर और दिव्य साहित्य सर्जन में लगे हुए स्वामी जी प्रभुपाद, यह परिस्थिति उससे कुछ अधिक भिन्न नहीं थी। जब भारत में वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर में सवेरे के पहर में बैठे होते थे, यह जरूर था कि वहां टैप रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन वहां भी वे उसी समय और उसी ग्रंथ चैतन्य चैतन्यामृत का कार्य कर रहे थे। एक बार उन्होंने टीका के साथ श्लोक दर श्लोक अनुवाद आरंभ किया था और दूसरी बार उन्होंने ग्रंथ पर लेख लिखे थे। जब भगवान चैतन्य की लीलाओं की भूमि भारत से इतनी दूर संसार के इस कोने में पहुंचकर वे चैतन्य चरितामृत के एक नए अंग्रेजी संस्करण का पहला अध्ययन आरंभ कर रहे थे, उन्होंने उसका नाम टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, भगवान चैतन्य की शिक्षाएं रखा। वे ऐसी दिनचर्या का अनुगमन कर रहे थे जो उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो गई थी। बहुत सवेरे उठ जाना और कृष्ण भावनामृत का पारंपरिक संदेश लिखना, अन्य सभी विचारों को छोड़कर वर्तमान परिस्थितियों की चिंता न करते हुए वे अपने आप को दिव्य ज्ञान के अंतत संदेश में निमग्न कर देते थे। यह भक्तिष्णा सरस्वती की उनकी इससे महत्वपूर्ण शिक्षा थी। अधिक से अधिक पुस्तकें तैयार करके उनका वितरण करना एक ऐसा विचार था जो उन्हें हर रात उठकर अनुवाद करने को प्रेरित करता था। प्रभुपाद प्रभात होने तक काम करते रहते थे, तब वे रुक जाते और प्रातःकालीन सभा के लिए नीचे मंदिर में जाने के लिए तैयार में लग जाते थे। श्री प्रभुपाद महाराज की प्रभुपाद लीलामृत की निताय गौर हरि प्रेमानंदे।
बन हो जाएगा ना, पाना
हो गया।